थोड़ा खड़े खड़े दौड़िए, खड़े खड़े, पीछे 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 वाले भी खड़े खड़े थोड़ा दौड़िए। हाँ, हल्के हल्के जंप लगाइए, हल्के हल्के, हाँ, धीरे धीरे। बहुत अच्छा। अब दो दो की जोड़ी बन जाइए, भाई भाइयों के साथ, बहने बहनों के साथ, भाई भाइयों के साथ, बहने बहनों के साथ दो दो की पैर बन जाइए और आमने सामने खड़े हो जाइए, आगे पीछे। भैया आप भाई साहब के साथ हो जाइए, अपनी जोड़ी के आमने सामने हो जाइए। एक दो को ओम शांति कहिए, हैंडशेक करिए, नमस्ते करिए, सलाम वालेकुम करिए, मुस्कराइए एक दो को देखकर। मुस्कराना है, पीठ थपथपाइए, एक दो को शाबाश कहिए, एक दो को, एक दो को, हाँ, गले लगिए। बहुत अच्छा। अब जिसको नहीं जानते हैं उनके साथ जोड़ी बनी। आसपास देख लीजिए, जिसको नहीं जानते हैं उनके साथ जोड़ी बन जाइए। और पांच बात पर आपको शेयरिंग करनी है आपस में, आप उनको बताएंगे, वो आपको बताएंगे। एक तो शरीर का नाम बताइए, कहां से आए हैं वो शहर का नाम बताइए, कौन सा बिजनेस करते हैं वो बताइए, दो या तीन भी चलेगा। और चौथा, ध्यान से सुन लीजिए, शरीर का नाम बताना है, किस शहर से आए वो बताना है, कौन सी बिजनेस आप करते हैं वो बताना है, चौथा, किस गुण से आप में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण बिजनेस में सफलता मिली, वो एक स्टोरी बताइए उनको कि मेरे में ये विशेष गुण है और इस गुण के कारण मुझे बिजनेस में क्या सफलता मिली, वो बताना है। और पांचवी बात, कौन सी मिठाई अच्छी लगती है वो बताना है। हो गई बातचीत, हो गई बातचीत, बहुत अच्छा। एक दो को थैंक यू करिए और बैठ जाइए। अब पांच जोड़ी सामने आएगी, काफी भाई बहने हैं, सबको तो नहीं बुला सकते, पांच जोड़ी यहां आएंगे स्टेज पर। कौन कौन आएंगे? सिर्फ पांच जोड़ी, बहनों की भी एक जोड़ी आ जाए। आप और आपकी जोड़ी साथ में आएंगे, इस तरफ आ जाए, माइक देना। दूसरी जोड़ी, बस पांच ही चाहिए, चार भाइयों की और बहनों। अब आप लोग नीचे बैठ जाए प्लीज, आप लोग नीचे आ जाए, बहनों की आ जाए, बहनों की एक जोड़ी आ जाए। ठीक है, हो गया बहने, आपकी जोड़ी कौन है? अब आप जोड़ी जो है आपस में, आप अपने पार्टनर की बात बताएंगे, जो पांच पॉइंट पर शेयरिंग हुआ उन्होंने क्या बताया, और आप उसकी बताएंगे। समझ में आया? हर एक को खुद की नहीं बतानी, आप उनकी बात बताएंगे, वो आपकी बात बताए। हाँ, शुरू करिए। आप उनकी बताएंगे, वो आपकी बताएंगे। नाम, शहर, बिजनेस, कौन सी मिठाई प्रिय है और किस गुण से व्यापार में सफलता मिली है।
मयूर से है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, मुंबई से आए।
फिर से,
मयूर,
मयूर भाई
जी,
मयूर उस तरफ फेस में।
और महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र।
और इनकी मेडिसिन की शॉप है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है कहते, और स्वीट भूल गया था, बंगाली मिठाई।
हाँ,
बंगाली मिठाई,
बंगाली मिठाई अच्छी लगती, बहुत अच्छा। और कौन से गुण से सफलता मिली बिजनेस?
ये कहते हैं बाबा जी से जुड़े हुए हैं, यही मेरे पास गुण है, और मैं जो भी हमारी दुकान पे ग्राहक आता है उसके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करता हूँ, उसके पास पैसे कम भी होते हैं तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ।
बहुत अच्छा।
मेरे पार्टनर जी का नाम है रोशन लाल, ये आए कोट कपूरा।
कहाँ से? कोट कपूरा,
पंजाब डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। देन इनका इलेक्ट्रिक का शॉप है, इनको बंगाली मिठाई पसंद है।
और
सेकंड वन,
कौन से गुण से सफलता दीदी?
ये पहले से तो नहीं जुड़े हैं बाबा से, बट अभी इन्होंने आना शुरू किया है। सेकंड में इनका नेचर काफी अच्छा है, बाकी जो भी कस्टमर्स आते हैं इनसे संतुष्ट रहते हैं। ये काफी प्यार से हर कस्टमर को हैंडल करते हैं भाई, यही एक अच्छा इनमें गुण है, जो कि इनकी इलेक्ट्रिक की शॉप काफी अच्छी चलती है इनके इसी गुण से।
मतलब प्यार का जो गुण, हाँ, है ग्राहकों के साथ प्यार से व्यवहार करते, इससे सफलता। हाँ। दीजिए, आप बैठे, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा।
हाँ बहन जी, इनके छाबरा जी के बारे में बताना है मुझे।
हाँ, आपको इनका बताना है, वो आपका बताएंगे।
हाँ जी, ये मेरे आप ही भाई हैं छाबरा जी, ये पंजाब से आए हैं, इनका कोयले का अच्छा व्यापार है और अभी भगवान से जुड़ने के लिए यहाँ आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनका कोयले का बिजनेस है,
हाँ।
छाबरा जी इनका नाम है,
हाँ।
और ये अभी यहाँ भगवान के दर्शन के हिसाब से आपसे मिलने के लिए आए हैं।
कौन से गुण से व्यापार में सफलता मिली वो बताना है ना मुख्य बात।
अच्छा जी, आपको कोयले की बिजनेस में ही सफलता मिली है ना।
वो शेयरिंग नहीं हुआ है आपस में बातचीत नहीं। अच्छा हाँ बताइए।
कोयले का इनका बिजनेस है उनमें, उसमें ही उनका व्यापार बढ़ा है कोयला।
वो तो है पर किस गुण के कारण व्यापार में हाँ, सफलता मिलती।
हम खुद बोलते हैं
हाँ।
अभी हम इनको अभी मिले हैं कुछ भूल जाती है। मैंने अपने कोयले के बिजनेस में अपनी एफिशिएंसी एफर्ट्स और मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। इनका नाम मिस्टर पंजवानी जी, कोल्हापुर से आए हैं।
कहाँ से?
कोल्हापुर से।
कोल्हापुर कोल्हापुर।
इनका काम सिलाई मशीन का है, धागे का है, सिलाई मशीन धागे का।
अभी इनके और हमारी मुलाकात थोड़ा ही समय हुई, मैं बताता हूँ। हम सिलाई का धागा बनाते हैं, जैसा कोट्स कंपनी का आता है, वर्धमान कंपनी का आता है, ऐसा आता है। बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए हमने बहुत सारी कंपनियों के धागे का स्टडी किया और उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर हमें सक्सेस होना है तो उनके जैसी क्वालिटी बनानी पड़ेगी और मार्केट में स्टैंड होने के लिए उनसे कम रेट रख के और इम्प्रूवमेंट करनी होगी और उसमें हम बहुत सक्सेस हुए हैं। भगवान की बहुत अच्छी कृपा। धन्यवाद।
ओम शांति।
आप लोग
ओम शांति। मेरा नाम वीरू सेवारामनी है, मैं गांधीनगर महाराष्ट्र से आया हुआ हूँ और ये हमारे पार्टनर गोपाल भाई जवर, इनका स्टील का काम है। इन्होंने बिजनेस में सक्सेसफुल, मैंने इनके स्वभाव से, इन्होंने अच्छी तरह स्वभाव उनका और हर कस्टमर के साथ इन्होंने नम्रता और अच्छी तरह पेश से इन्होंने बढ़ाया हुआ है और हमें गुलाब जामुन
नम्रता से व्यवहार
हाँ व्यवहार और हमें गुलाब जामुन पसंद है मिठाई
उनको
हमें उनको काजू कतरी
मिठाई बोलनी है क्या?
आप उनका परिचय दीजिए।
मेरा नाम पहले बताऊँ ना?
नहीं नहीं आपको इनका बता दें।
मेरे जो पार्टनर है इनका नाम वीरू सेवारामनी है। इनका धंधा गांधीनगर में है, रहते गांधीनगर में है, धंधा भी गांधीनगर में मीनाक्षी गारमेंट के नाम से है और ये नैतिकता का आधार लेकर धंधा करते हैं तो इनका धंधा अच्छा डेवलप हुआ है।
ताली बजाइए।
और दूसरा खाने में इनको कोई रसगुल्ला वगैरह भी बहुत पसंद है।
वेरी गुड।
मैं ओम प्रकाश मानधने,
उनका परिचय दे।
मेरे पार्टनर है संजय लाहोटी, ये हदगांव महाराष्ट्र से है। इनका बिजनेस मेडिकल तथा वाटर प्यूरिफाइड का है। ये बिजनेस में कड़ी मेहनत की वजह से और संयमता की वजह से इन्होंने अपने बिजनेस का बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया है और इनकी मिठाई है रसगुल्ला पसंद करते हैं काफी।
बहुत अच्छे।
हमारे साथी है ओम प्रकाश, इनका सोलर और केमिकल सप्लाई का बिजनेस है, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। और इनकी पसंद की मिठाई है काजू कतली और इनकी जो बिजनेस में जो सफलता मिली है उसका कारण इनका पॉजिटिव थिंकिंग और पेशेंस।
बहुत अच्छी। बैठ भाई, सिर्फ मिठाई का नाम सुनना नहीं, मन से खा भी लेना।
ये बहन है, इनके नाम पम्मी है, लुधियाने से आई हुई है। इनका हस्बैंड का बिजनेस है राइस मिल का और पेट्रोल पंप का। इनका स्वभाव शांत स्वभाव है तो घर में भी वही वातावरण रहता है।
बहुत अच्छी।
और इनकी मिठाई इनको ज्यादा पसंद नहीं है तो ये मिठाई कम खाती है।
बहुत अच्छा। आप इनका बताओ।
मेरी साथी बहन का नाम है कलावती बहन, ये महाराष्ट्र मुंबई से आई है। इनका शांत स्वभाव है और ये डायरेक्टर सेक्रेटरी डायरेक्टर है और इनकी मिठाई का गुलाब जामुन।
कौन सा बिजनेस?
बिजनेस नहीं है,
बिजनेस नहीं है, ये डायरेक्टर है किसी की,
सेक्रेटरी है, डायरेक्टर की सेक्रेटरी
जैसा काम। किसमें?
फार्मास्यूटिकल कंपनी में।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत सुंदर, सबके भी अपने अनुभव होंगे कि हमारी कोई ना कोई अच्छाई या विशेषता के कारण हमें अपने बिजनेस में सफलता मिलती है। व्यापारी का सदा दो शब्दों पर ध्यान रहता है, जमा और खर्च। बिजनेसमैन की ये विशेषता होती है कि वो रोज का अपना पोतामेल देखते हैं, हिसाब देखते हैं कि कितना कमाया, कितना खर्च हुआ और कितना बैलेंस रहा। धन और साधन का हिसाब तो हम रखते हैं और हर एक व्यापारी का लक्ष्य रहता है कि हम इतना कमाएं कि हम खुद अच्छी तरह खाएं, खिलाएं और फिर भी कुछ हमारे पास जमा रहे। यहाँ आप सब उपस्थित हैं, आप में से ऐसा कोई व्यापारी है जिसका बैंक में खाता ना हो? होंगे कोई ऐसे? हाँ, हर एक का बैंक में खाता जरूर होता है, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस हम जरूर बना के रखते हैं। और आप में से कोई भी ऐसा होगा जो जमा खाते से रोज निकालते ही रहे और डिपॉजिट ना करें, ऐसा कोई होगा? हाँ, नहीं। समझदार व्यापारी जितना बैंक बैलेंस से निकालता है, विड्रॉल करता है, उससे अधिक डिपॉजिट करता है ताकि एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस उनके पास रहे। क्यों हम बैंक बैलेंस बनाते हैं? क्यों बनाते? ताकि अचानक कोई खर्च आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे पास जमा हो तो हम उनको यूज कर सकेंगे। और जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उनके सामने कैसी भी मुसीबत आ जाए, कोई खर्च आ जाए, कोई नुकसान हो जाए तो वो घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है और अभी तो मैं इस परिस्थिति से पार हो सकूंगा। तो धन और साधन का बैलेंस सदा बनाए रखने पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन जीवन की और व्यापार की कोई भी परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? क्या सिर्फ धन और साधन चाहिए या और भी कुछ चाहिए? कोई भी परिस्थिति आती है, कोई नुकसान हो जाता है आपके बिजनेस में, कोई नुकसान हो जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उनको फेस करने के लिए फर्स्ट फॉरमोस्ट क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए और विल पावर चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। धन और साधन तो बाद में उपयोग करते हैं, कॉन्टेक्ट किसकी हेल्प वो बाद में लेते हैं, पर सबसे पहले कोई भी परिस्थिति आती है तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, पार करने के लिए, उस परिस्थिति के कारण को जानने के लिए, निवारण के लिए हमारे पास आंतरिक शक्ति चाहिए। साइलेंटली हम ऑब्जर्व कर सकें, धीरज से सोच सकें, फर्म डिसीजन ले सकें और हिम्मत से कदम उठा सके, ये सारी शक्तियां भी तो चाहिए ना। केवल धन और साधन से नहीं चलता है, पर ये आंतरिक शक्ति और गुण भी चाहिए। ये हमें कहां से मिलेंगे? अगर हमें कमाई कम लगती है, हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, कोई एक्स्ट्रा कमाई खड़ी करते हैं और इकोनॉमिकली हम साउंड बनने का पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर कोई चीज की कमी है घर में या दुकान में, हम जल्दी खरीद कर लेते हैं और स्टॉक बना के रखते हैं ताकि हम जब चाहिए तब उसका उपयोग कर सके। शरीर में कमजोरी लगती है तो हम आराम करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, शक्तिशाली खुराक लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिजिकली अपने आप को फिट कर लेते हैं ताकि हम जो काम करना चाहे वो हम कर सके। तो धन साधन और शरीर को एम्पावर करने की मेथड तो हम जानते हैं, लेकिन आत्मा में ये सारी शक्तियां आए कि समय आने पर, परिस्थिति आने पर मन हलचल में ना जाए, घबरा ना जाए, हिम्मत टूट न जाए, हम शांति रख सके, स्थिरता रख सके, धीरज रख सके, हिम्मत रख सके, वो पावर हमें कहां से लाने है? कहा जाता है कि व्यक्ति कितना कमाता है उससे वो शाहूकार नहीं बनता है, लेकिन कितना बचाता है उससे वो शाहूकार बनता है, कितना खाता है इससे वो बलवान नहीं बनता है, लेकिन कितना हजम करता है उससे वो बलवान बनता है। इसलिए कमाते जाएं और फिजूल खर्चों में उड़ाते जाएं तो हमारे पास जमा नहीं होगा। योग्य उपयोग भी करें, जरूरी खर्च भी करें, पर वेस्ट ना करें तो हम कुछ बचत बना सकते हैं। तो ये हुई धन साधन की बातें, लेकिन हमारी आंतरिक आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए मन और बुद्धि स्वस्थ रहे, संतुलित रहे और योग्य निर्णय कर सके, उसके लिए हमें और खजाने हैं, उनके जमा और खर्च पर ध्यान देने की जरूरत है। कुदरत ने हम सबको बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर्स दिए हैं। हम सब जानते हैं कि समस्त संसार में, समस्त प्राणी जगत में हम मनुष्य आत्माएं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हमारे अंदर सोचने की, समझने की और उस अनुसार प्रैक्टिकल करने की भी योग्यता है। हमारे जितना विवेक और कोई प्राणी में विकसित नहीं, फिर भी क्या कारण है जो इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, निश्चिंत नहीं है, निर्भय नहीं है। उसका कारण एक तो हमारा अज्ञान है कि कुदरत ने जो हमें चार मुख्य अविनाशी खजाने दिए हैं, वो खजाने कौन से हैं? पहला है विचार संपत्ति, मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर है कि हम सोच सकते हैं, हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, आइडियाज क्रिएट होते हैं। लेकिन इस अनमोल विचार संपत्ति का हिसाब आप देखिए कि कितना वेस्ट करते हैं और कितना सफल करते हैं। आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपके पास धन है, जमीन है, मैन पावर है, सब कुछ है, पर कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? आइडिया। आइडिया चाहिए। वो कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। आइडिया माना विचार चाहिए, थॉट चाहिए। इसलिए गीता में कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन जीते जगत जीत कहा हुआ है। युद्ध मैदान में शुरू होने से पहले मन में शुरू होते हैं। इसलिए विचार कर्म का बीज है। अगर बीज क्वालिटी हो, पावरफुल हो, तो हमारा हर कर्म भी श्रेष्ठ होगा, सुख और शांति का फल देने वाला होगा। अगर बीज क्वालिटी नहीं है तो फल भी अच्छा नहीं आएगा। अब आप देखिए, हरेक को विचार करने की योग्यता मिली है। आज मॉर्निंग के फर्स्ट लेसन में आपने सुना कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये हमारी तीन शक्तियां हैं। हमारी विचार शक्ति को मन कहते हैं। तो हरेक को मन मिला है, विचार शक्ति मिली है। पर आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, कितने विचार पॉजिटिव पावरफुल हैं और कितने विचार वेस्ट होते हैं। जो जितना ज्यादा वेस्ट करता है, नेचुरली एनर्जी लॉस, खुद को कमजोर महसूस करेंगे। आप बिगर मतलब चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे तो थकेंगे ना। बिगर मतलब खर्चे बढ़ाएंगे तो कितना भी कमाएंगे तो भी पहुंच नहीं सकेंगे। आपने देखा होगा कईयों को वर्षे में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है, पर अगर गंदी आदतें हैं, खराब संग है, फिजूल खर्ची में सारी प्रॉपर्टी उड़ा देते। इसलिए कहते हैं धन के साथ विजडम चाहिए, तो हम उनका सही उपयोग कर सकते। तो हरेक इस विचारों के खजाने को चेक करिए। मेडिकल साइंस कहता है कि व्यक्ति प्रति 2 सेकेंड एक विचार मन में उत्पन्न करता है। 1 मिनट में हम 30 से 40 विचार उत्पन्न करते हैं। रोज हम 30 से 40,000 विचार उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसमें जरूरी कितने, वेस्ट कितने। आज सुबह आप कितने बजे उठे? हाँ, इतने जल्दी उठे हैं। हाँ, 4 बजे से अभी 1 बजने आया, 7 घंटे आपको हो गए जागृत। माना आपने लगभग 10,000 से भी अधिक विचार उत्पन्न किए हैं। आज का आपका पॉजिटिव थॉट कौन सा रहा, कौन बताएगा? सोचा तो हरेक ने है ना। आज का आपका पॉजिटिव थॉट कौन सा रहा? खुश रहना। हाँ हाँ, तो देखो जैसे ही मैंने आपको कहा कि आज का पॉजिटिव थॉट आपका कौन सा रहा, तो आप क्या करने लगे? हाँ, खोजने लगे ना कि आज का पॉजिटिव थॉट कौन सा रहा, खोजने लगे। इसका मतलब आपकी जो आपने सोचा वो क्या सोचे है ना? हमें खोजना पड़ा, माना बाकी जो सोचा वो क्या सोचा, या तो साधारण थॉट्स किए, या कोई जरूरी बातें तो बहुत कम सोचने की होती है। इसलिए एक तो विचारों के खजाने का हिसाब देखिए, दूसरा है शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति, वाणी का वरदान इंसान को ही मिला हुआ है। हम अपने मन के विचारों को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। हमारे मुख से बोले गए 2 अच्छे शब्द दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एम्पावर करते हैं, उमंग उत्साह लाते हैं। और वही अगर 2 व्यंग या कड़वे शब्द उसको दुखी भी कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि तलवार के घाव तो मिट सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव नहीं मिटते हैं। तो ये भी आप हिसाब रखिए कि जागृत स्थिति में जितने शब्द हम बोलते हैं, बातें करते हैं, उसमें पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने, एम्पावर करने वाले कितने हैं और दूसरे को डिप्रेस करने वाले, दुख देने वाले शब्द कितने। कई बार जरूरत से ज्यादा हम बोलते, कई बार हम बहुत ऊंची आवाज से बोलते। जिस दिन वो व्यक्ति घर में नहीं होंगे, लगेगा आज फैक्ट्री बंद है, बड़ी शांति है। इतना बोल बोल करते हैं, जैसे वो हॉर्न बिगड़ जाता है तो बजता ही रहता है, बंद नहीं होता। ऐसे कई बार हमारा शब्दों पर संयम नहीं रहता है। आपने कईयों के अनुभव में सुना कि मीठी वाणी, नम्रता भरे शब्दों से ग्राहकों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। तीसरा है कर्म संपत्ति। कर्म के बल से ही हम सब कुछ प्राप्त करते, और हम भारतवासी कर्म का सर्वसामान्य सिद्धांत जानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल प्राप्त करेंगे। सुख और दुख की प्राप्ति का आधार हमारे अपने कर्म है। तो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म हम करते हैं, सुखदायी कर्म कितने, व्यर्थ कर्मों में, नकारात्मक कर्मों में, गलत कर्मों में कहां तक हम रहते हैं। तो कर्म का हिसाब देखिए। और चौथा ट्रेजर है समय, समय का खजाना। टाइम इज मनी कहते हैं, बट मोर देन मनी कहते हैं, गवाया हुआ धन वापस कमा सकते हैं पर गवाया हुआ समय वापस आ नहीं सकता है। हर इंसान को रोज के 24 घंटे मिले, हम उसका यूज क्या करते। इन्हीं 24 घंटों में कोई महान बन गए, कोई भ्रष्ट बन गए, कोई अधम बन गए। मिले तो हरेक को 24 घंटे का समय। इसलिए इस विद्यालय में हमें सिखाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना है तो सेल्फ मैनेजमेंट करो, क्योंकि समय का उपयोग या तो हम सोचने में या बोलने में, बातें करने में या कर्म करने में यूज करते हैं। अगर हम अपने मन वचन कर्म को पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल बनाएंगे तो टाइम अपने आप हमारा सफल होगा। अब आप देखिए इसका हिसाब किताब कि अगर हमारे विचार, वाणी, कर्म, समय पॉजिटिव एंड पावरफुल है तो वो जमा होते हैं, हमें एम्पावर करते हैं। और वहीं अगर हमारे विचार, शब्द, कर्म, समय व्यर्थ है, नकारात्मक है तो वो हमारी शक्ति को माइनस करते हैं। इसलिए जब कोई गलत कर्म हम करते हैं हमें भय लगता है, चिंता होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी माइनस होती है। आज चारों ही खजानों में हिसाब देखिए, असंतुलन है। विचार हमारे असंगत हो गए हैं, हमारे थॉट्स में रेलेवेंसी नहीं। कहते हैं मन भटकता है, बैठे हैं यहां मन से कहां, शरीर से यहां मन से कहां, कभी कुछ कभी कुछ, आगे पीछे, पास्ट, भविष्य, मन कहां का कहां भागता है। तो विचारों में रेलेवेंसी नहीं है। शब्द निरर्थक, फालतू कितने होते। कई बार हम कहते हैं मैंने ऐसे ही बोला, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे ही बोला, पर ऐसे ही क्यों बोला। जरूर सूक्ष्म में ऐसा भाव होता है तब तो हम व्यंग में बोलते और बोलने के बाद फिर सॉरी करते हैं, तो ये तो वेस्ट हो गया ना। कर्म हमारे कल्याणकारी नहीं है, या तो रूटीन कर्म है या स्वार्थ के हैं, कॉमन काम है, परोपकारी श्रेष्ठ कर्म नहीं है, अंडरस्टूड है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आवश्यकता है जमा जब होता है तो हम एम्पावर होते हैं। बताया ना, जितना जमा का खाता अच्छा है, हम बड़े से बड़ा नुकसान या मुसीबत को पार करते हैं। इसी प्रकार जब हमारे विचार शुभ हैं, शुद्ध हैं, शक्तिशाली है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव थॉट किसे कहते हैं? जो विचार शुभ हो, प्योर हो और पावरफुल हो। सोचे बहुत कुछ पर करें कुछ नहीं तो भी वेस्ट। ईर्ष्या वैर द्वेष के वश सोचना नेगेटिव है, इसलिए विचार सकारात्मक हो, शब्द हमारे समर्थ हो, शक्तिशाली, कर्म परोपकारी हो तो हमारा टाइम क्रिएटिव होता है, रचनात्मक उससे कहा जाएगा और तब हम सशक्त आत्मा पावरफुल बनती है। फिर कैसी भी मुसीबत आए, बात आए, हम शांत, स्थिर, संतुलित, स्वस्थ, अचल, अडोल रह सकते हैं। और जब ये पावर हमारे में आती है तो हमारे में तीन विशेषताएं आ जाएंगी। जितना संतुलन अच्छा, बैलेंस अच्छा, तो तीन योग्यता आप में आएगी। सबसे पहला उचित निर्णय करने की योग्यता आएगी। हम मुंझेंगे नहीं, माइंड विवरिंग नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे, लेकिन राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकेंगे। इतना हमारा मन स्थिर, एकरस और स्वच्छ बनता है। हमारे में दूसरी योग्यता आती है जब हमारे मन, वचन, कर्म श्रेष्ठ शुभ बनते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल बनती है कि हमें सबसे सम्मान मिलता है। हम रिस्पेक्टेबल बन जाते, हमें रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करना पड़ता है कि मैं सीनियर हूं, सब मुझे मान दे, हमें कहने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है रिस्पेक्टेबल, हर कोई हमें सम्मान देगा। और तीसरा कि इतनी रिस्पेक्टेबल हाई पर्सनालिटी बनने के बाद भी हमारी वाणी में नम्रता, मधुरता बनी रहेगी, हम सबके साथ उचित वार्तालाप कर सकेंगे। फिर वो हमारे घर का कोई कर्मचारी है, कोई वर्कर है, कोई ग्राहक है, कोई डीलर है, कोई हम शरीक व्यापारी है, सबके साथ हम उचित शब्दों में बातचीत कर सकेंगे। हमारी वाणी हल्की नहीं होगी, अपशब्द नहीं होंगे, दुख देने वाले शब्द नहीं होंगे, लेकिन हमारा वाणी पर संयम होगा। यही हमारी सफलता के शस्त्र है। इसलिए आवश्यक है हमें अपनी आंतरिक शक्तियों में बैलेंस लाने की। कई बार लोग कहते हैं कि हम मूल्यों को धारण करते हैं पर लोग हमारा मिसयूज करते हैं, परंतु उसका कारण है बैलेंस नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि कई बार मान लो आप अपने वर्कर्स के या कर्मचारियों के साथ काम करते हैं और आप कहते हैं समय के हिसाब से आप फर्म रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं कि देखो टाइम से आना है, टाइम से काम होना चाहिए, पर मन में आप फ्लेक्सिबल रहते, अनुरूपता माना फ्लेक्सिबिलिटी। हम जानते हैं कि हमने कहा दो घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, परंतु हम मशीन नहीं हैं, मनुष्य हैं, हम अनेकों से जुड़े हैं। कोई भी कारण आ जाए, कोई आधा पौना घंटा आगे पीछे हो जाए, तो हमें वो स्वीकार कर लेना चाहिए। उस समय हमारे मन में अपने कर्मचारी के लिए कोई कड़वे या नफरत के भाव ना आए। तो टाइम में फर्म रहते हैं तो मन में फ्लेक्सिबल रहे तो हमें सफलता रहेगी। अगर मन में भी वो ही आ गया कि नहीं उसने नहीं किया ना, माना उसका कट कर देंगे, पगार कम कर, ऐसे नहीं, तो वो अमानवीय व्यवहार लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल कि हमें जीवन में महत्वाकांक्षी तो बनना है, आगे तो बढ़ना है। आध्यात्मिकता ये नहीं सिखाती है कि हमें कोई भौतिक प्रोग्रेस नहीं करना है। बेशक हमें महत्वाकांक्षी बनना है, लेकिन जो हमारे पास है उससे संतुष्ट भी रहना है। जो है उनसे संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो जो है उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमें प्रोग्रेस के लिए नए नए आइडियाज और प्रोजेक्ट्स भी अपनाने हैं। तो इसलिए हमें अपने ही गुणों में, जैसे कहते हैं लव एंड लॉ, दोनों का बैलेंस करना है। माना लॉ को लव फुली अप्लाई करना है। कई बार हम कायदे से काम कराते हैं पर वो कायदा या नियम लव फुली अप्लाई नहीं करते हैं तो बड़ा रूड लगता है और हमारी पर्सनालिटी थोड़ी क्रूअल महसूस होती है। इस प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी एंड फर्मनेस, इजी एंड बिजी, ऑथोरिटी एंड ह्यूमिलिटी, इन गुणों का बैलेंस हमारे जीवन में होगा तो जरूर हमें सफलता मिलती है। प्रतिदिन तीन लोगों से आपका व्यवहार होता है, एक तो आपके कार्यकर्ता कर्मचारी जो आपके साथी हैं, दूसरा आपके ग्राहक और तीसरा है जिन चीजों का आप व्यापार करते हैं। रोज इन तीनों से आपका लेना देना रहता है, संपर्क रहता है। अगर अपने कर्मचारियों के साथ दो गुण चाहिए, युक्ति और निष्ठा, हरेक कर्मचारी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। हम एक ही लकड़ी से सबको हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर कर्मचारी को जाने समझे और उस मेथड से उनको हैंडल करें। मान लो आपकी दुकान में 5 लोग काम कर रहे हैं, कोई भी कारण से दुकान में आते ही आप मान लो डांट देते हैं। अब आप बताइए 5ों का रेस्पोंड एक सरीखा होगा? होगा नहीं, क्योंकि 5ों की पर्सनालिटी अलग अलग है। जो पॉजिटिव होगा वो आपकी डांट से भी अच्छा सबक लेके अपने आप को सुधारेगा, नेगेटिव होगा वो और टेढ़ा हो जाएगा। तो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी डिफरेंट है, एक ही मेथड से हम सबको नहीं चला सकते, इसलिए उनको जान पहचान कर उस विधि से उनको हैंडल करना है। और दूसरा, कर्मचारी के प्रति हमारी निष्ठा हो, सिंसियरिटी हो। वो कर्मचारी है, हमारे साथी है, हमारी वो टीम है, उनके बल पर ही तो हम सफल होते हैं। तो हमें उनकी वैल्यू हो, वो मशीन नहीं है, हमें उनको सिर्फ यूज नहीं करना है, हमें उनको प्यार भी करना है, वैल्यू भी देनी है और उनका शुभ भी सोचना है। तो अगर हमारे में मेथड है और सिंसियरिटी है तो हम वैरायटी कर्मचारियों को हैंडल करने में भी सफल रहेंगे। इसी प्रकार ग्राहकों के साथ भी युक्ति और विशिष्टता। ग्राहक भी भांत भांत के स्वभाव के आते हैं तो हमें उनको टॉलरेट करना है। अगर एक भी ग्राहक के साथ हम रूड बिहेव करते हैं, ऐसा वैसा रफ डफ बोलते हैं तो वो दूसरे 10 को सुनाएगा और 10 को आने से रोकेगा। इसलिए ग्राहक भी वैरायटी नेचर के होते हैं तो उस हिसाब से हमें उनको हैंडल करना है। और हमारे आर्ट ऑफ बिजनेस, हमारी व्यापार करने की कला में कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो ग्राहक अपने आप बंधे रहे। जैसे कई लोग इतनी सच्चाई से, ऑनेस्टी से व्यापार करते हैं तो लोग एक दो को बताते हैं कि इनके पास छोटे बच्चे को भी आप कोई चीज लेने भेजेंगे तो भी धोखा नहीं मिलेगा। फलाना व्यापारी बहुत ईमानदार है, वहां आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा, वो बहुत प्यार से हर चीज दिखाएगा। तो कोई ऐसी विशेषता आपके व्यापार में, कला में होनी चाहिए जो ग्राहकों को पकड़ के रखती है। और जिन चीजों का आप रोज लेना देना करते हैं उसमें भी दो गुण चाहिए। एक तो विशिष्टता, कोई ऐसी स्पेशल आपके दुकान में चीजें हो जो लोग कहते हैं कि फलाने की दुकान में आप जाइए वहां तो ये चीज मिल ही जाएगा, उनके पास इतनी वैरायटी होती है कि उनके पास तो मिल ही जाएगा। फलानी दुकान में बिल्कुल जो नया एकदम न्यू चीजें मार्केट में आती है वो उनके पास जरूर मिल जाएगी। तो कुछ ऐसी हमारी स्पेशलिटी हो। और दूसरा निष्ठा भी, चीजें हम जो देते हैं वो जीवंत व्यक्तियों को देखते हैं, इसलिए उनके हेल्थ को नुकसान करने वाली या उनको दुखी करने वाली चीजें ना हो, ताकि अच्छी चीजें हम देंगे तो हमें उनसे ब्लेसिंग मिलेगा, हमारा बिजनेस और इम्प्रूव होगा। तो इस प्रकार हमारी अंदर शक्ति भरे गुण आए, हमारे मन वचन कर्म पॉजिटिव बने, उसका सिंपल तरीका जो हम भाई बहने अपना रहे हैं वो है राजयोग। विद्यालय से जुड़े लाखों व्यापारियों आज और कल और सेशन में आप अनुभव भी सुनेंगे। हमारे कई विशेष राजयोगी व्यापारी भाई बहने आए हैं, उनके अनुभव का भी एक सेशन है, वो उनके मुख से ही आप सुनेंगे। लेकिन इस ज्ञान और योग का रोज प्रैक्टिस करने से हमारे मन वचन कर्म में कौन सी विशेषता आती है ये लास्ट चित्र में आपको दिखा रही हूँ। राजयोग में दो प्रैक्टिस है। एक पहली प्रैक्टिस आज हम सबने सीखी मॉर्निंग के सेशन में, सोल कॉन्शियसनेस, अपने वास्तविक शुद्ध आत्म स्वरूप से जुड़ना, उनका चिंतन करना और धीरे धीरे आत्मभिमानी बनते जाना। और दूसरा है गॉड कॉन्शियसनेस। हम दिल से, माना सत्यता पूर्ण बुद्धि से परमात्मा के साथ योग लगाएं, उनके साथ और मदद का अनुभव करें। तो ये दो प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो सबसे पहले जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे विचारों में एकाग्रता आने लगती है, और गॉड कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे विचारों में क्लैरिटी आती है। कभी आप मुंझेंगे नहीं, क्लैरिटी आती है। इसी प्रकार सोल कॉन्शियस बनने से शब्दों में ऑनेस्टी आती है, क्योंकि जब हम अपने सत्य आत्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं तो नेचुरली हमारी वाणी में सत्यता आती है, और गॉड कॉन्शियस बनने से हमारी वाणी मधुर बनती है। परमात्मा की याद से आत्मा को इतना प्यार मिलता है कि हमारे मुख से अमृत निकलेगा, मधुर वाणी होगी। सोल कॉन्शियस बनने से कर्म में परफेक्शन आता है, संपूर्णता आती है, क्योंकि आत्मा अपने आप में गुणों का स्वरूप है। तो जब हम सोल कॉन्शियस बनकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म परफेक्ट होने लगते हैं, लेकिन गॉड कॉन्शियस बनने से कितने भी हमारे कर्म महान हो, उच्च हो, परफेक्ट हो, तो भी अभिमान नहीं आएगा, हमारे में निमित्त भाव रहेगा, ट्रस्टीशिप रहेगी। और चौथा, सोल कॉन्शियस बनने से हमारा टाइम प्रॉफिटेबल बन जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि हमें एम्पावर करने वाला बन जाएगा। और जब आप गॉड कॉन्शियस बनते हैं तो आपका टाइम इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपके एक एक सेकंड की वैल्यू हो जाती है। इसलिए हम महान आत्माओं से, योगी आत्माओं से एक सेकंड मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उसका टाइम वैल्यूएबल बन जाता है। तो इस प्रकार ऑटोमेटिक अगर हम सुबह शाम सत्य ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं और योग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन वचन कर्म में इन गुणों की धारणा हो जाती है और शक्ति आ जाती है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। व्यापार जीव व्यक्ति ही व्यापार करती है, व्यक्ति ही संबंधों में आती है, इसलिए व्यक्ति ठीक है तो व्यापार भी ठीक होगा, व्यवहार भी ठीक होगा। जब हम खुद को ठीक करते हैं तो परिवार और व्यापार दोनों ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो समय हो चुका है, हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। एक 10 सूत्री कार्यक्रम इस विद्यालय ने व्यापारियों के लिए बनाया है, अभी मैं उसका वर्णन नहीं करती हूँ, लेकिन पीछे जो हमारा लिटरेचर मिल रहा है वहाँ लगभग 15 या 16 सूत्रों का एक पोस्टर है, वो आप जरूर लें। और रोज सुबह दुकान जब शुरू करते हैं मॉर्निंग में, एक नजर उन सूत्रों पर डालें, पढ़ लें, तो सारा दिन आने वाली बातों को पार करने में बहुत मदद आपको मिलेगी। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, सत्र समाप्त होगा, भोजन आप करेंगे, विश्राम भी जरूर करिए, क्योंकि सुबह आप जल्दी उठे हैं, आराम करना जरूरी है। आपको आबू और इधर उधर घूमने के लिए दो तारीख पूरा दिन दिया गया है। 3 तारीख भी सिर्फ मॉर्निंग के लेक्चर्स हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, इसलिए आज आप आराम करेंगे ताकि शाम के सत्र में आप बिल्कुल फ्रेश होकर आएंगे। ओम शांति।
कर दे प्रभु के हवाले।